नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।